ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। आठवां पॉइंट है, अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है, तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी बात है ज्ञान की, कि अगर आप अव्यक्त स्थिति में नहीं है तो अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते, मुश्किल है। बच्चे चाहते तो है कि बाप से मिले, पर बाप से मिलने के लिए आपको आपके स्थिति में आना पड़ेगा। बिना स्थिति के बाप नहीं मिलेगा। इस दुनिया में भी अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तो उस क्वालिफिकेशन को मैच होने वाले व्यक्ति से आप नहीं मिल सकते। आपको एक दर्जा चाहिए किसी को मिलने के लिए भी, उसके बिना आप नहीं मिल सकते इस दुनिया में। पीएम सीएम को मिलने के लिए भी कुछ आपकी पात्रता चाहिए, पात्रता के बिना कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसी ऐसी जगहें भी है जहां पर आपको प्रॉपर उस प्रकार का ड्रेस कोड पहन के ही जाना अलाउड है, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सार वही है कि जब तक आप आपके स्वरूप में नहीं आते जो इस दुनिया में आवश्यक है, तब तक इस दुनिया के उस व्यक्ति से भी आप नहीं मिल सकते, तब तक उस जगह को भी आप विजिट नहीं कर सकते। यहां तो बाप से मिलने की बात है, तो बाप से मिलने के लिए अव्यक्त स्थिति में आना बहुत आवश्यक है। बिना अव्यक्त स्थिति के आप मिलन नहीं मना सकते, कितनी भी कोशिश कीजिए। जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में हैं, उन्हीं को बाप की मुरली समझ में आएगी, उन्हीं को यह ज्ञान समझ में आएगा। बाकी बस हाजिरी लगाएंगे, बाकी बस सुनेंगे, कहेंगे कि इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं दिखेगा। बदलाव सिर्फ अव्यक्त स्थिति में रहने वालों के अंदर दिखेगा। अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, मुरली अंदर उतर जाएगी। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे ज्ञान तो लेते हैं, पर बच्चों को पता नहीं है कि ज्ञान हम किससे लेते हैं, ज्ञान देने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, वह अवेयरनेस नहीं है। और सभी बच्चों के लिए बाबा कहेंगे, जिनको अवेयरनेस नहीं है ना, उनके हाथ से एक दिन बाप छूट जाएगा। बाबा अभी आपको बताता है, जिनको ज्ञान योग का और बाप का अवेयरनेस नहीं है, उनके हाथ से बाप छूट जाएगा। फिर भले वो कहाँ भी जाए, बाप को कोई फिक्र नहीं है, बाप को कोई पड़ी नहीं है कि उनका क्या होगा, क्योंकि बाप आदि से लेकर अंत तक बच्चों को अवेयरनेस में लाने की कोशिश कर रहा है। कितने आए कितने गए, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप का कार्य चल ही रहा है। आपके एक के रुकने से या दो के जाने से कुछ बिगड़ेगा नहीं या कुछ सुधरेगा नहीं। यहां आप आए हो अपने लिए, बाप के लिए नहीं आए हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए जो शिक्षाएं बच्चों को मिल रही है लेने की कोशिश कीजिए। इस बात को भी ध्यान में रखिए, जितने सेकंड आप बाप के ऊपर नाराज होंगे उतने दिन संगम के आपके माइनस होंगे बाप के साथ के। इस बात को ध्यान में रखना, मजाक नहीं समझना। जब आप पर बीतेगी तो पता चलेगा। इसलिए बाबा के ज्ञान को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, बहुत ज्यादा। आदि में अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को भोजन खिलाने वाले चले गए, नहीं रहे। संदेशिया भी चली गई, ऊपर से मैसेज लाकर बाबा को सुनाने वाली, बाबा को भोजन बनाने वाले खिलाने वाले चले गए, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्य चलता रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अव्यक्त स्थिति में आएंगे तो बाप को समझ पाएंगे, बाप को समझा तो जीवन की उन्नति कर पाएंगे। वरना बाबा कहते हैं ड्रामा, आपके एक के ना सुधरने से बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा, क्योंकि बाबा के 33 करोड़ तो बनने ही है। इसलिए शिक्षाओं को धारण करो, समझो। जो शिक्षाओं को धारण नहीं करते उनका इस ज्ञान में कोई काम नहीं है। जो बाप की श्रीमत को फॉलो नहीं कर सकते वो यहां ना आए, बाप के पास ना आए, रहे भी नहीं, कोई प्रोग्राम भी अटेंड ना करे, भट्टी में भी ना आए, क्योंकि बाप को समझा नहीं है, श्रीमत को समझा नहीं है, तो उनका यह कोई काम नहीं है। विश्व परिवर्तन के लिए बाप अकेला काफी है। इसलिए अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो अव्यक्त स्थिति में आ जाओ। बाप की पहली श्रीमत है कि अव्यक्त स्थिति में आ जाओ। अव्यक्त स्थिति में आएंगे तो ही अव्यक्त मिलन मना पाएंगे और तो ही बाप की शिक्षाओं को समझ पाएंगे, वरना ऐसे ही लाइट लेते रहेंगे और जीवन कभी बदलेगी नहीं। जैसे थे वैसे रहेंगे और बाप का नाम बदनाम करेंगे अंत में, कि बाप के साथ रहकर क्या सीखा आपने, कौन सी अवस्था को पाया, कहां तक पहुंचे, ऐसे बच्चे होंगे। इसलिए अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। अगर अव्यक्त स्थिति में नहीं है तो आप अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते। अभी भी ज्ञान सुन रहे हो, अपनी स्थिति को चेक करो। अगर स्थिति नहीं है तो उठ के चले जाओ, यहां आपका कोई काम नहीं है, ज्ञान सुनना बंद कर दो। स्थिति में होंगे तो ही यहां बैठो, वरना मत बैठो। बाबा कहते जरूरत नहीं हॉल भरने की, समझ की बात है बच्चों के लिए। यह कोई टाइम पास के लिए आध्यात्मिक संस्था नहीं बनी हुई है कि बस आए मौज मस्ती की और चले गए। अपने को सुधारने के लिए बनी है, अपना कल्याण करने के लिए बनी है, और नहीं कर सकते आपको दरवाजा खुला है। अगर अपनी जीवन को बनाना चाहते हैं तो बैठिए, वरना मत बैठिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है, ज्यादा नहीं बिल्कुल ही अव्यक्त स्थिति नहीं है बच्चों की। बाप जो अवस्था चाहता है बिल्कुल नहीं है। कब सीखेंगे, कब आत्मिक स्थिति में आएंगे, कब ज्ञान को धारण करेंगे, अपने से पूछिए। क्या बस ऐसे ही चलते रहेंगे, कब आत्मिक स्थिति में आएंगे? समझ की बात है बच्चों के लिए। आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते तो आप कर क्या रहे हैं? अव्यक्त अवस्था को पाने के लिए आप इस ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हो। बच्चे कोशिश भी नहीं कर रहे, कुछ हाथ पैर भी नहीं हिला रहे, और बस चल रहे हैं। लगता है कि अपने आप अव्यक्त अवस्था हो जाएगी। इस गलतफहमी में नहीं रहना, आने वाला ऐसा समय आने जा रहा है जिसकी स्थिति नहीं होगी, उसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई अधिकार नहीं है ये ज्ञान उसको देने का, स्थिति वालों को ही यह ज्ञान मिलेगा। स्थिति वाले ही बाप से मिलन मना पाएंगे, बाप के साथ ठहर पाएंगे, बाप से पालना ले पाएंगे। और जिनकी स्थिति नहीं है, दुनिया खुली है, बाबा कहते हैं स्थिति बना के आओ। और समय जैसे शुरू हुआ है स्थिति बनाने का, स्थिति नहीं ज्ञान नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अव्यक्त अवस्था को चेक करो, अपनी स्थिति को चेक करो। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। बाबा कहते दो बातों में तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तीसरी बात की कमी है। कौन सी? देखिए, एक है कथन, दूसरा मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज है, तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय जो रिजल्ट देखते हैं मंथन से कथन ज्यादा है, बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना, वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है, पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं कथन करने वाले बहुत हैं, कथा सुनाने वाले एक दूसरे को, ज्ञान देने वाले इस संसार में बहुत आए हैं, बहुत तैयार हुए हैं, जिसको देखो ज्ञान देता जा रहा है, पर धारणाएं कितनी है पता नहीं है, मगन अवस्था कितनी है पता नहीं है। आखिर इतना सारा ज्ञान सुन क्यों रहे? बाबा को याद करने के लिए ना। तो बाबा को याद कितना करते हो? बस ज्ञान सुनने से कुछ होगा नहीं, उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। और अगर याद नहीं करेंगे तो ज्ञान में चलने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा घर बार संभालो, दुनिया में मौज करो और जीवन सुख से जियो और शरीर छोड़ दो। ज्ञान की धारणा करो। बाबा ने क्या कहा है? आत्मिक स्थिति में आ जा, नहीं आ सकते ज्ञान को छोड़ दो। तब तक ज्ञान नहीं पकड़ना जब तक आत्मिक स्थिति में ना आए। इतने वर्ष हो गए, एक छोटा बच्चा भी एक महीने में एबीसीडी सीख जाता है, एक महीने में लगातार प्रैक्टिस करने के बाद। आपको तो कितने वर्ष हो गए और अभी भी आत्मिक स्थिति का अता पता नहीं है। जो ज्ञान का सार है मगन रहना, अपनी अवस्था में रहना, इसका कोई पता नहीं है। कितना समय आप कोशिश करते हो अपने से पूछिए, सारे दिन भर में आत्मिक स्थिति में रहने के लिए आप कितना समय कोशिश करते हो? पता चलेगा कोई कोशिश नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। अभी कोई कोशिश नहीं, कोई संकल्प नहीं, आत्मिक स्थिति में कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। बाबा कहते कुछ तो कोशिश कीजिए। सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता, दृष्टि या टोली लेने से कुछ नहीं होता, बनने से सब कुछ होता है। बाबा ने आज तक जितनी श्रीमत दी, कितने श्रीमत का आपने पालन किया अपने से पूछिए, कितने श्रीमत पर आप चले। एक कोई ऐसी श्रीमत है आपके जीवन में जो आपने 100% पक्की की है? बता सकते हैं आप कोई एक श्रीमत? नहीं है तो कर क्या रहे आप इतने वर्षों से? बाबा की कोई भी बात, एक भी बात आपने पक्की नहीं की है। क्या आप प्रेम स्वरूप बने हो, शांत स्वरूप बने हो, शक्ति स्वरूप सुख स्वरूप बने हो, ज्ञान स्वरूप बने हो, चेक करो अपने से। आत्मिक स्थिति में आए हैं, संपूर्ण पवित्र मनसा वाचा कर्मणा बने हैं, कौन सी शक्ति है आपके अंदर या कौन सा गुण है आपके अंदर जो कहने लायक है कि आप बने हो, अपने को चेक करना। नहीं बने तो अपने से ही विचार करना, आप किसको ठग रहे हैं। बाप को कोई ठग नहीं सकता, आप अपने आप को ठग रहे हैं। समय जा रहा है, समय का ध्यान रखिए। हर दिन जा रहा है, आपकी मगन अवस्था कहाँ पर है, बाप में है या संसार में है, अपने से चेक करो। आप कहाँ पर मगन रहते हैं, बाप के अंदर मगन रहते हैं या संसार में रहते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे अभी भी है ना, नाम मान शान से ऊपर नहीं उठे। अभी ऐसे बच्चों को क्या कहे, शब्द नहीं इनके लिए कहने के लिए, जो अभी तक मान अपमान से बाहर नहीं निकल रहे, जो निंदा स्तुति से बाहर नहीं निकल रहे। ये बच्चे लायक ही नहीं है बाप के, इनको बच्चे कहने में भी लज्जा आती है। इतने वर्ष हो गए आपको, आप एक श्रीमत नहीं फॉलो कर सकते आत्मिक स्थिति में आने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आए, 6 महीने अस्पताल में पड़े रहेंगे, वो चलेगा, लेकिन 6 महीने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करें ये नहीं चलेगा। सारा संसार खत्म हो जाए, बाढ़ में कोई बड़ा अकाल आ जाए या भूकंप हो जाए, वो चलेगा, पर घर में बैठकर शांति से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कितने वर्ष हो गए, बाबा कहते आपको जरा भी लज्जा नहीं आती। आप सोचिए, विचार कीजिए अपने से। नए नए बच्चे उनकी बात छोड़ दीजिए, आपको कितने साल हुए, थोड़ा भी कुछ लगता नहीं है कि बाप की श्रीमत पर हम चलते नहीं हैं। विचार कीजिए अपने से, ऐसे ही चलेंगे तो आपका क्या होगा, विचार कीजिए। अभी भी अंत का समय चल रहा है, अभी भी शांति में बैठकर सोचिए कि आपको करना क्या है, अब किस लिए ज्ञान में आए हूं, धारणा कौन सी करनी है, बाप कहता क्या है, अब कर क्या रहे हो। विचार कीजिए, आप कल के भरोसे जी रहे हो, बस इस बात को याद रखना, कल खत्म हो चुका है। बाबा कहते कल कल करते ही ये बच्चे शरीर छोड़ेंगे, कल कल करते, अंत में सब ड्रामा क्लियर होगा, सभी के सामने क्लियर होगा। बाप शिक्षाएं दे रहा है लंबे समय से, शिक्षाएं धारण नहीं किए ना, इसका भी बोझ आपके माथे पर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर नहीं कहना कि बाबा गलती हो गई, धर्मराज के सामने मुंह भी नहीं खोल सकते, मुंह पर डंडा मार देगा। इसलिए बाबा अभी भी आपको सावधान कर रहा है, समय जा रहा है, अपनी स्थिति में आओ, अपने को समझो, ज्ञान को समझो, बाप की श्रीमत को समझो। समय खत्म हो रहा है, समझने की कोशिश करो, अपनी मगन अवस्था बनाओ, अपने में मगन हो जाओ। बस हो गया कथन करना, दूसरों को ज्ञान देना, अभी मगन अवस्था का समय है, अपने में मगन हो जाओ। और अंत समय में ये बात भी याद रखना, आप चिल्लाओगे और बाप हंसेगा, इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। अभी बाप चिल्ला रहा है, गला फाड़ के सुना रहा है और आप हंस रहे हैं। अंत में बाप हंसेगा, इस बात को ध्यान में रखना। देखते हैं ड्रामा, तो जितना हो सके मगन अवस्था को बढ़ाओ, अपने में मगन हो जाओ, बाप में मगन हो जाओ जितना हो सके। समय खत्म हुआ है, वापस कहते हैं आपको, बाबा कहते तीसरा नंबर है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है जिसको भरना है। जितना हो सके मगन अवस्था को बढ़ाओ, अपने में मगन हो जाओ। मगन होंगे तो कुछ प्राप्त कर सकेंगे। पहले अपने को प्राप्त करो, वरना सब व्यर्थ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं, बाप भी नहीं लगेगा। बाप को भी पाने के लिए पहले अपने को पाना पड़ता है। यह नहीं समझना कि बाप आपके सामने मुरली चला रहा है इसका मतलब बाप को आपने पा लिया। इस गलत फहमी में नहीं रहना। जब तक आपने अपने आप को नहीं पाया है, आप बाप को नहीं पा सकते। मुश्किल है, कहां से पाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा समय अपने में बिताओ। अभी 8 घंटे का समय खत्म हो चुका, अभी 10 से 12 घंटे अपने में रहो और बाप की याद में रहो। बाबा दिन ब दिन समय के बारे में जानकारी देता जा रहा है बच्चों को, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे। 8 घंटे का समय खत्म हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। अभी 10 से 12 घंटे आपको अपनी और बाप की याद रहनी चाहिए, वरना माया खा लेगी आपको, खा जाएगी। बाबा ने तो माया को फ्री छोड़ा है, जिसको खाना है खा लो, सब तेरे शिकार हैं। जिसकी शिकार करनी है कर लो, मैदान खुला है, आपके हाथ में। जो मगन अवस्था में रहेंगे, जो मगन अवस्था में होंगे, उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतींद्रिय सुख। बाबा कहते अपनी अवस्था को चेक करो। अगर मगन अवस्था में होंगे ना, तो आपकी चाल चलन से अलौकिकता और अतींद्रिय सुख देखने में आता है। आपके चेहरे पर क्या लगा रहता है चेक करना। अतींद्रिय सुख दिखता है, अलौकिकता दिखती है, या गोबर लगा हुआ है चेक करना, चेहरा कैसा है चेक करना। बाप के साथ बच्चे चल रहे हैं, बाप का ज्ञान ले रहे हैं, फिर भी चेहरा क्या है? कभी सोचा है ज्ञान कौन देता है? इतने वर्षों से बाप ज्ञान दे रहा है, कभी सोचा है क्या आपने? कभी समझा है? बाबा कहते समय देखो, ऐसे बच्चों के लिए क्या तोहफा लेके आता है। समय की राह देखते हैं। बाबा बस वार्निंग देगा, एक अवेयरनेस देगा, और बाबा भी समय की राह देखेगा। देखते हैं समय क्या करता है, अलौकिकता दिखती है, अतींद्रिय सुख दिखता है, या क्या दिखता है, समय दिखाएगा। बाकी ड्रामा बाबा कहते हैं जो मर्जी ड्रामा की। तो अपने को चेक करना, आपके चेहरे पर अलौकिकता और अतींद्रिय सुख दिखता है या नहीं दिखता। ये चेहरा मुरझाया हुआ होता है, कीचड़ लगा हुआ होता है, गोबर लगा हुआ होता है, चेक करना आपका चेहरा कैसे होता है। बाबा कहते 24 घंटे चाहिए, 24 घंटे आपके चेहरे पर अलौकिकता दिखे, अतींद्रिय सुख दिखे, ऊपर नीचे ना हो किसी भी बात को लेकर। आप चेक करो अपने आप को, आप कैसे हो, आपकी अवस्था कैसी है। अपने को चेक करना। मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। बाबा कहते जिनकी अवस्था मगन होगी उनका गुण दिखेगा, अतिंद्रिय सुख और अलौकिक चेहरे वाला, उनके चेहरे से ही पता पड़ेगा, बाकियों के चेहरे से नहीं दिखेगा, क्योंकि ज्ञान को समझा नहीं है, श्रीमत को उठाया नहीं है। इसलिए बाबा कहते अपने को चेक करो। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। वापिस से कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का समय है, अति तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अति तीव्र समय खत्म हुआ है, समय नहीं बचा है, जितना हो सके पुरुषार्थ में समय को बिताओ, समय को लगाओ, वरना ड्रामा और कुछ नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तब तो यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बाबा कहते अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है, अभी दौड़ लगाने का समय है, अभी बहुत ज्यादा स्पीड से आपको आगे बढ़ना है। अपने संस्कारों को साल में महीनों में खत्म होने का समय खत्म हो चुका है। बाबा कहते हैं आपको मैक्स एक दिन देते हैं कि एक दिन में अपने संस्कारों को खत्म करो, कर सको तो 24 घंटा योग में बैठो, बाबा नहीं जानता कुछ भी, पर अभी एक दिन में संस्कार को खत्म करो, वरना दूसरे दिन क्या होगा ड्रामा आपको बताएगा, अगर आपने नहीं खत्म किया तो। इसलिए बाबा आपको समय देता है, समय की भी वार्निंग देता है, एक दिन में एक संस्कार खत्म होना चाहिए। आपको किस प्रकार से करना है ये मर्जी आपकी है, तीव्र पुरुषार्थ कितना करना है ये मर्जी आपकी है। पुराना समय चला गया, खत्म हो गया, अभी एक दिन में एक संस्कार, जो संस्कार आपको भी परेशान कर रहा है और सबको परेशान कर रहा है उसको एक दिन में खत्म करना है। बीमारी कड़ी हो चुकी है, एक दिन में अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया दूसरे दिन आप मर जाएंगे, किस तरीके से मरेंगे ड्रामा बताएगा। इसलिए अभी से शुरू करना, एक दिन में एक संस्कार खत्म करना है, दोबारा वह संस्कार बाहर ना आए। आया, बीमारी वापस लग गई, उसे वापस अलग रखा जाएगा, आपके दुनिया के हिसाब से क्वारंटाइन किया जाएगा अगर संस्कार रहा तो। निकला, बाबा कहते आओ बैठो बाप के सामने, मर्जी बच्चों की किस चीज को कितना पकड़ के रखना है और कितने जल्दी छोड़ना है, कितना तीव्र पुरुषार्थ करना है, मर्जी बच्चों की है, बच्चों के हाथ में है सब कुछ, आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है, आपके मन बुद्धि को किसी ने बांध के नहीं रखा है। भले तन से सेवा होगी, हाथों से सेवा होगी, वाणी से सेवा होगी, बुद्धि को किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, आपकी आपकी बुद्धि आपके पास है, बस बुद्धि से बाप को याद करना है, बुद्धि से अपनी अवस्था में रहना है। बाबा कहते हैं मर्जी आपकी है, तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है, बनना है या नहीं बनना है वो भी बाबा आपके ऊपर छोड़ता है, वो भी मर्जी आपकी। आखिर यही कहेंगे कोशिश कीजिए, और बाप जैसे आपको बनाने की कोशिश कर रहा है उस प्रकार बनने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके अपनी अवस्था में रहिए और बाप को याद कीजिए। कौन सा सेकंड आपका शरीर छुड़वाएगा आप नहीं जानते, इसलिए बाप की याद में रहिए जितना हो सके। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।